الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو جو بنایا اس کو عالم خلق کہتے ہیں اور اس میں اپنی مخلوق کو بسایا. اب اس ساری مخلوق میں انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اعلی مقام دیا، اور باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو انسان کے تابع کر دیا. اب کیونکہ انسان نے اس دنیا میں رہنا تھا، آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس کے اسماء پوچھے، فرشتے نہ بتا سکے مگر آدم علیہ السلام نے اس کے اسماء بتا دیے، ورنہ فرشتے چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں عام عبادت کا موقع دیں، کیونکہ جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنائے گا تو فرشتوں کے دل میں خواہش ہوئی کہ جیسے جنات نے پہلے فساد کیا ہے انسان بھی خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ فرشتوں کو موقع دیا اور اپنا بتایا خیال کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو اگر فرض کیا کوئی آپ کا بہت ہی پیارا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ میں فلاں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس میں کس کو انچارج بناؤں، اس خدمت کا موقع کس کو دوں، بادشاہ اگر کسی وزیر سے یہ مشورہ کرے تو کیا کہے گا کہ بادشاہ مجھے موقع دیں، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کا غلام. تو فرشتوں نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ اللہ ہم جو ہیں آپ کی عبادت کرنے والے، ہم دن رات عبادت کریں گے. لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ نہیں، یہ کام بڑا خاص ہے جو فرشتے تم نہیں کر سکو گے، تم اس کو نہیں جانتے، اللہ تعالی جانتے ہیں. کام ہی ایسا ہے کہ فرشتوں میں تو نفس ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ایسی مشین بنائی جس کے اندر نفس بھی تھا اور دل بھی تھا، اللہ نے اس کو دماغ بھی دیا، اعضا بھی دیے، ایک پوری جسم جو ہے جس کے اندر کمبینیشن آف آرگنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اب انسان مکسچر ہے، اس میں نفس بھی ہے اور عبادت کا جذبہ بھی ہے. فرشتوں میں سارا عبادت کا جذبہ اور شیاطین میں شر کا جذبہ زیادہ، عبادت کا جذبہ کم. تو انسان ہی اس کے لیے بہترین مشین ہے جو اس دنیا میں رہے گی. تخلقوا بالاخلاق اللہ، اور اللہ تعالی کے جو نشانیاں ہیں ان کو وہ ظاہر کرے گی، اللہ کی جو صفات ہیں ان کو وہ پریکٹیکلی اس کو ثابت کر کے دکھائیں گے. مثلا اللہ تعالی رحمان ہے، بندے کو حکم دیا تم بھی رحم کرو. اللہ تعالی رب ہیں، بندوں کو حکم دیا کہ تم بھی اپنے بچوں کو پالو، ماں باپ کے اندر ایسا جذبہ رکھ دیا. ہاں اللہ تعالی کی مثال کوئی بھی نہیں، انسان نے اس کی نقل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ستار ہیں، بندوں کو بھی کہا کہ تم بھی جو ہے لوگوں کے عیب کو چھپا دو، غیبت منع ہے، بہتان منع کر دیا گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مشین بنا کر بھیجا जो ये सारे काम कर सकती है। अब इब्तदा में आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, और ये वाकया हम सब जानते हैं कि तमाम मलाइका को, जिन्नात को सजदा करने के लिए कहा, इब्लीस ने इनकार कर दिया, फरिश्तों ने सजदा किया, अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान इब्लीस से पूछा कि तुम्हें किस चीज ने रोक दिया कि अल्लाह का हुक्म था तुम सजदा करते, तुम्हें किस बात ने रोक दिया? तो वो कहने लगा कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, हकीर है, ये वैल्यूलेस चीज है। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, उसने तकबर किया और वो काफरों में शामिल हो गया, न मानने वाला। काफर क्या होता है? रिजेक्शन करने वाला है, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो एक सजदा न करने पर अल्लाह ताला नाराज हुए, क्योंकि उसने इरादे के साथ इंटेंशनली जो है रिजेक्शन की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहि सलाम को जन्नत में आबाद किया, अम्मा हवा उनके साथ रहने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि यह शजरा ममनूना है, इस दरख्त का फल नहीं इस्तेमाल करना। शैतान ने वसवसे डाले और उनसे भूल करवा दी, उनका इरादा नहीं था लेकिन भूल करवा दी। अब भूल हुई और आदम अलैहि सलाम चाहते थे कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हमेशा पाएं, हमेशा जन्नत में रहें और अल्लाह ताला के कुर्ब में रहें, और शैतान ने यही वसवसा डाला कि आप अगर हमेशा यहां रहना चाहते हैं तो आप जो है इस दरख्त के फल को खा लें। अब जिस दरख्त की स्पीशी बताई थी कि ये एक टाइप ऑफ दरख्त का फल नहीं खाना, शैतान ने वसवसा ये डाला कि वो तो कहीं और दरख्त था जहां मना किया था, ये तो वो नहीं है, आप यहां से खा लें और आप हमेशा यहां रहेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हवा ने भी मशवरा दिया कि हाँ, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह का कुर्ब हो, जन्नत हो, हमेशा हमेशा खुशियों वाली जिंदगियां हों, यहां रहें। तो उन्होंने और वो उसने कसमें खाकर ये बात कही और आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा ने वो फल खा लिया। जब वो फल खा लिया उनके अंदर चेंजेस आ गई, ऐसी चेंजेस आई कि वो अपने ऊपर ढांपने लगे अपने आप को और परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। अब अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि ये क्या किया, हमने तो आपको मना किया था। और फौरन आदम अलैहि सलाम ने कहा कि मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया, मुझसे गलती हो गई, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी उस गलती को माफ कर दिया, लेकिन अब बताया कि अब आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, अब आप जन्नत में नहीं रह सकते क्योंकि चेंजेस आ गई, अब निजाम बदल गया। जैसे प्यूबर्टी के ऊपर चेंजेस आ जाती हैं, पहले प्यूबर्टी से पहले इंसान की एक हालत होती है लेकिन अचानक तब्दीली आई, अब इसकी जरूरियात, इसकी हर चीज बदल गई। लिहाजा आदम अलैहि सलाम और अव्वा हवा को जमीन पर उतार दिया गया कि अब जो निजाम है बाथरूम का और बाकी चीजों का, याद रखें कि अम्मा हवा नबी आदम अलैहि सलाम की पसली से पैदा हुई थी। अल्लाह अगर चाहते तो पूरी इंसानियत को उनकी पसली से पैदा कर सकते थे ना, लेकिन अब निजाम बदल गया, चुनाचे अब ये दुनिया में आ गए और यहां इनकी औलाद हुई। आदम अलैहि सलाम ने जन्नत में जिंदगी गुजारी थी, जन्नत में खाने भी मिलते होंगे, साफ ज़ाहिर फल खाया था, जन्नत का लिबास भी था क्योंकि अल्लाह ताला ने लिबास ले लिया था, जन्नत में घर भी होगा जहां पर वो रहते होंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के खाने भी खाए हुए थे, जन्नत के लिबास भी पहने हुए थे और जन्नत के घर भी देखे हुए थे। انسان کی ضروریات میں جو ہے روٹی کپڑا اور مکان بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے بھی ایک بادشاہ ملک میں تھے, انہوں نے بھی عوام کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے نعرہ لگایا تھا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں گا روٹی کپڑا مکان دوں گا. تو یہ روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ واقعی اس دنیا میں بہت بڑا ہے, کیونکہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آ گئے تو نہ یہاں روٹی پکی ہوئی تھی, نہ کوئی مکان بنا ہوا تھا, نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑے تھے. اب یہ ان کا انتظام کرنا پڑا, ہر چیز بنانی پڑی, یہ اس کی ضرورت تھی. لہذا جبریل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ رب العزت نے ان کو اس کے انتظامات سکھائے کہ ایگریکلچر کیسے کرتے ہیں. ہر نبی کو جو ہے مختلف چیزیں سکھائی گئیں, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے لوہے کو مولڈ کرنے کا طریقہ سکھایا, حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ یعنی کہ لکڑی کا کام کیسے کیا جاتا ہے. تو اس طرح مختلف جیسے ضرورت تھی ویسے کام سکھائے گئے, لیکن ان کاموں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو الہامی طریقے سے بھی سکھایا ہے. جیسے اللہ رب العزت جانوروں کو الہام کر دیتے ہیں, چڑیا کا بچہ گھونسلہ بناتا ہے, زمین میں سوراخ کر کے اپنا گھر نہیں بناتا, چونٹی جو ہے وہ زمین میں سوراخ کر کے اپنا گھر بناتی ہے. ہر جانور اپنی ضرورت کے مطابق اپنے سائز کے مطابق جو ہے اپنا گھر بناتا ہے. اچھا اسی طرح ہر جانور کا کھانا پینا اس کو بھی اللہ رب العزت الہام کر دیتے ہیں ان جانوروں کو کہ آپ کے لیے یہ خوراک ہے, اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے, ظلم نہیں کر سکتے, جو چیز اللہ کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے وہی کھاتے ہیں. حتیٰ کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے, درندہ ہے, خونخوار ہے, لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ بھوکھا ہوتا ہے تو شکار کرتا ہے, جب وہ بھوکھا اس کو بھوک نہیں لگتی تو پھر وہ کسی جانور کو کچھ بھی نہیں کہتا, حتیٰ کہ دوسرے جانور اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. اور شیر جو ہے روزانہ 3 ٹائم کھانا نہیں کھاتا جیسے انسان کھاتا ہے, انسان تو شیر سے بھی زیادہ کھاتا ہے, شیر جو ہے وہ ہفتے میں 1 دفعہ کھاتا ہے. اسی طرح اگر آپ مگرمچھ کو دیکھیں تو وہ بھی بہت تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے, لیکن دیکھیں اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے. تو زیادہ کھانا کوئی ضرورت نہیں ہوتی, یہ ہم مزے کے لیے کھاتے ہیں, انسان کی ضرورت اتنی نہیں ہے. صحابہ کرام جو ہے بھوکھے رہتے تھے. جو پہلی چینج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آئی تھی, اما عائشہ فرماتی ہیں, وہ کھانے سے متعلق تھی. لوگ کھانا زیادہ کھانے لگ گئے تھے, یعنی فاقہ کشی جو پہلے ہوتی تھی وہ فاقہ کشی بعد میں پھر لوگ نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ صحابہ کے زمانے میں بھی بہت فاقہ کشی تھی, تابعین تبع تابعین سلف الصالحین, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے فرق آ گیا. تو پہلا فرق جو کمیونٹی کے اندر آیا تھا وہ کھانا تھا. تو بہرحال یہ عالم خلق ہے, اور عالم خلق کو اللہ تعالی نے اس طرح سے بنایا ہے کہ جس میں ہر چیز ایک سسٹم سے بنی ہوئی ہے. اگر اس سسٹم کو ہم سائنس کہہ دیں تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا, بھی ہر چیز کی ایک سائنس ہے. اگر آپ کو وہ سائنٹیفک رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز پتہ چل جائیں تو آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے پہلے پہلے پتھر کا زمانہ تھا تو پتھروں کو جو ہے لوگ یوز کرتے تھے, اسی طرح لکڑی کا زمانہ, پھر اسی طرح لوہے کا, اب لوہے کو مولڈ کرنا اور بنانا, اب یہ ایک ٹیکنیک تھی کہ اس کو میلٹ کر کے اس کو مولڈ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ڈفرنٹ ڈفرنٹ ساری جو ہے چیزیں, حتیٰ کہ سلیکون جو ہے وہ ریت سے, ایسی چیزیں جو کبھی انسان سوچتا ہی نہیں تھا बाद में उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसको भी यूं इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्ड का पहाड़ किसी को मिल जाए तो वो जब तक उसको प्योरीफाई करना नहीं जानता उसके लिए वो बेकार है गोल्ड का पहाड़ भी। डायमंड भी इसी तरह एक आम पत्थर है और जो है वो अगर मिल भी जाए तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये कोई खास चीज है। एक अफ्रीका में इलाका था और उसके अंदर डायमंड सरफेस पे पड़े हुए थे ऐसे जमीन के ऊपर। वहां के लोगों को कुछ पता नहीं था कि ये डायमंड है और वहां परिंदे जो हैं वो आते थे और वो उठा के उन पत्थरों को छोटे छोटे पत्थर होते थे उनको खा लेते थे। जब वो बाकी अपना खा पी रहे होते थे उसको भी खा जाते थे। वहां से उड़ते थे और उड़ के वो जिस इलाके में कहीं जाते होंगे वहां लोग शिकार करते थे उस परिंदा का। अब वो जो शिकार करते तो उसके पेट में से वो पत्थर भी निकल आते थे। उनको वो पत्थर देखने में अच्छे लगते थे लिहाजा वो उनके यहां एक फैशन बन गया कि वो जो है उसके स्टमक से वो पत्थर निकाल के धोकर एक जैसे वो पेनी सेविंग के लिए लोगों के पास एक बर्तन सा होता है वो उसमें डाल दिया करते थे। हर एक के घर में वो इस किस्म के वो डेकोरेशन पीस की वजह से वो उसमें वो डाले हुए पड़े हुए थे। एक मरतबा यूरोप से कोई बंदा ऐसा आया जो डायमंड का काम करता था और वो ऐसे देहाती सा इलाका, उसने आके जब वहां वो देखा कि भई ये पत्थर तो कोई खास है, उसने कहा ये कहां से मिलता है? तो उन्होंने कहा कि तो ऐसे परिंदे से है और हर घर में ये तो ऐसा फैशन बना हुआ है, सबके घरों में ये ऐसे पड़े हुए हैं। उसने कहा अच्छा कुछ पत्थर आप मुझे भी दे सकते हैं? उन्होंने कहा ले जाओ कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उसको भी दे दिए। वो ले गया, उसने लेबोरेटरी में चेक किया, उसको डायमंड कट्स दिए। जब उसे कट दिए तो उसको पता चला कि वाकई ये तो डायमंड है। वो वापस उस इलाके में आया और आके उसने लोगों को कहा कि ये कहां से परिंदे आते हैं। तो उसने ट्रेस किया और बिला आखिर पता चला कि एक एरिया ऐसा है जहां ये डायमंड जो है ऐसी जमीन पे बिखरे हुए पड़े हुए। तब जाके गवर्नमेंट को भी पता चला और उन्होंने उस जगह को फेंस करके रोका और जिन लोगों के पास वो मर्तबान में भरे हुए वो डायमंड पड़े हुए थे आनन फानन रईस लोग बन गए। इंसान को पता चल जाए इंसान इस्तेमाल कर सकता है, ये आलम खल्क है, अल्लाह ताला ने बनाया इसी तरह। लेकिन आलम अमर जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से बनी है। अल्लाह ने कुन कहा और फयाकून वो चीज हो गई। उसका एक निजाम ही और है और उसमें इंसान की रूह बनी, फरिश्ते बने और मरने के बाद जो भी चीजें हैं, जन्नत है जहन्नम है और लोह कलम कुर्सी, सब चीजें जो हैं अल्लाह ताला ने कुन फयाकून से बनाया। अब आलम खल्क में इंसान को जब भेजा गया, आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इनके लिए एक मेजर चेंज थी। क्या चेंज थी? कि जब जन्नत में रहते थे तो वहां तो बनी बनाए खाने मिलते थे। जन्नत के खानों का अजीब अंदाज है कि बस आसमान से एक दस्तरखान आएगा, बिछा दिया जाएगा, आप जो विश करेंगे वो खाने लग जाएंगे, आप खाएंगे और उसके बाद जो है दोबारा एक हवा से चलेगी और सारी चीजें वो प्लेटों समेत उड़ा के ले जाएगी। अब आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप बताएं किचन वालों को कितना उनको अच्छा लगेगा कि ऐसे मेहमान जितने मर्जी आ जाएं और एक बस दस्तरखान बिछेगा और सब प्लेटें लग जाएंगी और खाने लग जाएंगे, रोस्ट पके हुए आ जाएंगे और सब लोग खा लेंगे। जब सब लोग खा लेंगे न बर्तन धोने होंगे न कुछ करना होगा, दोबारा बस वो दस्तरखान उठेगा और बादलों में चला जाएगा। अब अगर कोई कहे कि मैं इसका निजाम समझूं और ये मैं भी कर सकूं, दुनिया में मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये कुन फयाकून सी चीज बनी है। दुनिया के निजाम ऐसे नहीं हो सकता, दुनिया के निजाम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लकद खलकनल इंसान फी कबद, इंसान को अल्लाह ताला ने मुशक्कत में इस दुनिया में पैदा किया। आदम अलैहि सलाम वहां पर रहते थे। अच्छा, लिबास के अंदर भी इसी तरह जन्नत का लिबास क्या था कि वहां एक क्लाजेट सी थी और उस क्लाजेट के अंदर कपड़े जनरेट होते थे। इंसान जो सोचता है वो लिबास उसके पास आ जाएगा। आपके पास बड़ी सी क्लाजेट हो, बटन लगे हुए हो, आपने उस बटन को दबाया कि मुझे फला ड्रेस आज चाहिए और वो मशीन के जरिए से चलता हुआ एक ठक करके आपके सामने आ गया, है ना। लेकिन इस सारी मशीन को भी अगर आप बनाएं, जैसे वो जो है लॉन्ड्री में जाए ना, बड़ी लॉन्ड्री जो करते हैं लोग, उनके यहां ऐसी मशीनें होती हैं, आप जाते हैं वो नंबर देखते हैं आपका और उस नंबर को प्रेस करते हैं, उसके मुताबिक वो मशीन चलती है, थोड़ी देर बाद आपके कपड़े बाहर आ गए, माशाल्लाह। अब जन्नत की जो है क्लाजेट इस किस्म की बनी हुई थी, लिबास आ जाते थे और जैसा आपने पसंद किया, ये भी नहीं कोड प्रेस करना पड़ेगा, आपने विश किया और वो लिबास बना बनाया आपके पास आ गया, ऐसा जबरदस्त। अच्छा, घर भी अजीब कि घर आपकी मर्जी का बना हुआ है और आपने विश किया कि मेरे घर का जो फ्रंट है ना, ये बैक में चला जाए, बैक वाला एरिया फ्रंट पे आ जाए, साइड वाला इधर हो जाए, उधर वाला इधर हो जाए। अच्छा, अब वो कुछ छोटे मोटे घर तो नहीं है, वो तो महल जन्नत के अंदर जो आखिरी जन्नती होगा ना, उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो जहन्नम में रह रहा होगा और वहां पर पुकारेगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। तकलीफ होती है, जैसे बीमार होता है अस्पताल में चला जाता है, वो पुकारता है या अल्लाह मेहरबानी कर सेहत दे दे। तो जहन्नम में भी इसी तरह वो जब या अल्लाह कहेगा, तो इस तरह कहने पर अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजेंगे कि भाई पूछो इसे, अल्लाह अल्लाह कह रहा है। तो कहेगा, अल्लाह बड़ी तकलीफ है, ये जहन्नम की बड़ी तकलीफ है, बस आप मुझे निकाल के जहन्नम के चाहे जो ना एंट्रेंस पे खड़ा कर दे, बस इस यहां से निकाल दे, यहां बड़ी तकलीफ है। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देंगे, अच्छा इसको निकाल के बिल्कुल जहां से जहन्नम शुरू होती है ना दरवाजा, उस पे खड़ा कर दो। अब ये वहां खड़ा होगा और जहन्नमियों के अजाब को देखेगा, चीखो पुकार को, और जहन्नम की जो आग है उसकी तपश अभी भी आ रही होगी, वहां की बदबू आ रही होगी। तो कुछ अरसे के बाद इसको होगा कि मैं ये देख नहीं सकता, ये बड़ी तकलीफ वाली चीज है, देखा नहीं जा सकता। फिर वो पुकारने लगेगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। पूछा जाएगा कि मेरे बंदे क्यों शोर मचाते हो, तो कहेगा मुझसे नहीं देखा जाता, बस मेरा मुंह उधर कर दें और थोड़ा सा यहां से हटा दें, क्योंकि उसको पता होगा कि मैंने बुरे आमाल किए, मैं डिजर्व ही नहीं करता मैं कि मैं जन्नत मांगूं। अब अल्लाह ताला उसको और रिलैक्सेशन दे देंगे और थोड़ा सा दूर कर देंगे ताकि ये जो है जहन्नम को देख ना सके। लेकिन बहरहाल वो जगह भी ऐसी होगी अनकंफर्टेबल सी, क्योंकि ये जन्नत और जहन्नम के दरमियान कभी झोंका आएगा आग का और कभी आएगी ठंडी हवा क्वेटा की, सुभान अल्लाह, इधर से भी गरम गरम हवा आ गई, उधर से ठंडी ठंडी हवा। अब इसके अंदर कुछ अरसे के बाद ख्याल आएगा कि अगर चलो जन्नत के करीबी हो जाते हैं तो पता चलता कि भाई उधर क्या है, ठंडी हवाएं उधर से आती हैं, खुशबू भी कभी कभी आती है, इधर से कभी कभी बदबू आती है गर्म। अब ये कहेगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अब पूछा जाएगा कि भाई क्या चाहिए, क्यों पुकार रहे हो? कहेगा जन्नत के लायक तो हूं नहीं, चलो अल्लाह मियां जन्नत के करीब कर दीजिए, बाहर से खड़ा होकर देखता रहूंगा। अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देंगे कि इसको जन्नत के दरवाजे पे जाके वहां करीब खड़ा कर दो। अब ये जन्नत को खड़ा देख रहा होगा, इसके दिल में हसरत पैदा होने लग जाएगी कि अंदर क्या है, वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह, ये तो अंदर ये। अब उसके दिल में ख्वाहिश हो जाएगी कि किसी तरह मैं भी अंदर दाखिल हो जाता। एक बूढ़ा बंदा था, मस्जिद में बैठा हुआ दुआ मांग रहा था पंजाबी में कि या अल्लाह एक बार बस जन्नत च बढ़न दे, फिर आप ही में टूसा फिरसा वदा, बस एक दफा एंट्रेंस मिल जाए। उसकी दिल में तमन्ना है कि या अल्लाह एक दफा जन्नत में चला जाऊं, आगे तो फिर मैंने खुद ही ढूंढ लूंगा जगह। तो ये भी ऐसी तमन्ना करेगा, या अल्लाह बस अब एक दफा दरवाजा खोल दे, मैं भी अंदर किसी तरह चला जाऊं। फिर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह पूछेंगे क्या चाहिए। अब इसको जो है अल्लाह ताला रहम फरमाएंगे और जन्नत का दरवाजा खुलेगा और ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये बंदा जो जन्नत में दाखिल होगा ये आखिरी जन्नती होगा, और किताबों में लिखा है इसको 10 गुना बड़ी जन्नत दुनिया से मिलेगी। और जन्नत में जाने के लिए क्या है, आमनु व आमिलु सालिहात। कुरान मजीद में बार बार यही बात समझाई गई। अब देखो ये ईमान वाला है, जब भी तो या अल्लाह कर रहा है, लेकिन किस प्रोसेस से ये वहां तक पहुंचा और अल्लाह ने इसको कौन सी जन्नत दी, 10 गुना बड़ी। तो ये या अल्लाह करता हुआ वहां पहुंचा। अगर आज हम जो ईमान वाले हैं आमनु हैं, अगर आमिलु सालिहात कर लें तो हर हर अमल हमें जन्नत में आला मकाम तक पहुंचाएगा। जितने अच्छे अमल करते रहे, जितना बैंक बैलेंस बनाना है, यही अपॉर्चुनिटी है। वहां जाकर तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला भी अल्लाह अल्लाह करेगा, लेकिन जो है वहां अल्लाह फिटकार देंगे, सुनेंगे ही नहीं। तो बहरहाल अब ये इंसान आलम खल्क में रहता है और इसको अल्लाह यद्उ इला दारिस सलाम, अल्लाह ने जन्नत के लिए जो है दावत दी हुई है कि तुम जन्नत में आओ। अल्लाह ने जन्नत के लिए इसको बुलाया हुआ है और उसकी प्रिपरेशन कहां करनी है, इस दुनिया में करनी है, है ना। और जन्नत में जब ये बंदा जाएगा तो जैसे जन्नती वहां पहुंचता है, वहां पर इसको खाना पेश किया जाएगा, जन्नत का खाना। पहला खाना जब ये खाएगा, एक लुकमा लेगा, उसको एक लज्जत आएगी। फिर दूसरा लुकमा जब लेगा तो उसकी लज्जत पहले से बढ़ जाएगी। फिर और लुकमा लेगा, उसकी लज्जत और बढ़ जाएगी। आप अंदाजा करें कि हर हर लुकमे पे जन्नत की लज्जतें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि इंसान की एक आदत है कि अगर उसको एक ही जैसी चीजें मिलती रहें तो वो बिलाखिर आदि हो जाता है और ना शुक्री करने लग जाता है। जब उसको तब्दीली से चीजें मिलती हैं तो वो शुक्र करता है। शुरू शुरू में जब बंदा अमेरिका आता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है, पाकिस्तान से इधर लैंड करता है, बड़ा खुश होता है, वाह भाई वाह, यहां तो बहुत अच्छी जगह है, वहां तो बड़ी तकलीफ में रहता था। कुछ ही अरसा गुजरता है, कहता है जी क्या है ये अमेरिका, बड़ा अमेरिका है ना, उसकी अहमियत खत्म है ना। आप देखिए, हम शुरू शुरू आए अपार्टमेंट्स में रहते थे, फिर अल्लाह ने घर बड़ा दे दिया, घर वाले भी बड़े खुश। कुछ अरसा गुजरा, अब वो उसमें भी कीड़े निकलने लग जाते हैं, मेरा घर में ये है, मेरे घर में वो है। भाई बंदा याद करे पहले वाली हालत को, वो याद नहीं रहती। अच्छा, इसी तरह बढ़ता जाता है ہر دفعہ جب چینج آتی ہے خوش ہوتے ہیں, بعد میں پھر اس کی اہمیت گنوا بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کی نفسیات جانتے تھے, اسی لیے اللہ نے جنت ایسی ویریبل بنائی ہے کہ جس کے مزے بدلتے رہتے ہیں. اب اس بات کو ایک طریقے سے سمجھیں. اگر فرض کیا 10 بندوں کو چکن دیا جائے اور مرچ مسالے دیے جائیں اور کہا جائے کہ آپ چکن پکائیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ سیم مرچ مسالے اور سیم چکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ. کمال ہو گیا. میرے خیال میں پکانے والوں کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی ہوتی ہوگی کہ وہ ٹیسٹ کو مینٹین کر سکے, کیونکہ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے. کبھی مرچی زیادہ ہو گئی, کبھی نمک کا پرابلم ہو گیا, اب وہ ٹیسٹ بدل گیا, اب وہ خود ہی کھڑے ہوئے کہتے ہیں یار یہ کیا پکا دیا میں نے, یہ تو عجیب چیز بن گئی میرے سے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں آپ کھانا کھائیں, کھانے کا ٹیسٹ میں فرق آ گیا. وہی بندہ کبھی ایک انداز سے پکاتا ہے, دوسرے انداز سے اس کے ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے. اللہ ذائقے اس دنیا میں پیدا کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو کہ اگر یہاں میں کرتا ہوں تو آخرت میں کیا ہوگا. اچھا آپ انگریڈینٹس لیں کھانوں کے, ان کو آپس میں مکس کرنا شروع کر دیں. ایسی ایسی ڈشز آج کل بن رہی ہیں کہ خدا کی بنا. بفے لگاتے ہیں, 200 کے بفے ہوتے ہیں, 200. اچھا ایک بندہ پاکستان میں کہنے لگا کہ میں سبزیوں کی 250 ڈشز جانتا ہوں. 250 ڈشز پتہ کیسے بناتا ہوگا؟ یہی کرتا ہوگا کہ اس کو لیا, اس کو ملایا, اس کے ساتھ اس کو ملایا, اس کے ساتھ اللہ نے اس میں ذائقہ ڈال دیا. کہیں مرچی زیادہ کر دی, کہیں مرچی کم کر دی, اب کھانے وہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کرنے سے اور ذائقے بدلتے چلے جاتے ہیں. تو جیسے اب اس دنیا میں ہم آئے, رہنا ہے ہم نے, تو روٹی کپڑا مکان ہمارا مسئلہ ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے ماں کا دودھ کا انتظام کر دیتے ہیں. اب یہ دودھ جو ہے فری میں اللہ کی طرف سے گفٹ اس کو مل جاتا ہے, لیکن یہ بچہ نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے. تو کھلانے پلانے کا بھی ثواب ملتا ہے, ماں کو بھی ثواب ملتا ہے, حالانکہ اس کا اپنی اولاد ہے. وہ کھلاتی پلاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. اگر وہ یہ نیت کر لے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور میں اس کو کھلا پلا رہی ہوں, یہ بڑا ہوگا اور یہ اللہ کی عبادت کرے گا, تو بسم اللہ پڑھ کے وہ کھلائے گی, الحمدللہ کر کے ختم کرے گی, اور بچے کو جو ہے پاکیزہ کھانا کھلائے گی, حلال طیب لے کر جو ہے کما کر, تو یہ اس کی باڈی کا انگریڈینٹ بنے گا. باڈی کی گروتھ جو ہے, چھوٹے بیبی کا سائز, بڑے بندے کا سائز, یہ سائز کا تبدیل ہونا یعنی اس کا وہی فوڈ ہی ہے. جو سبزیاں اور گوشت ہم نے کھائی ہیں وہی ہمارا گوشت بنا ہوا ہے, اسی سے ہماری ہڈی بنی ہوئی ہے, اسی سے سارا جسم بنا ہوا ہے. اس کے لیے حلال کمانا اور حلال کھانا ذبیحہ. اب دیکھو اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا کہ بھئی ہم ذبیحہ کھائیں, اس کی اہمیت ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے حکمن جو ہے حلال کی ہوئی ہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. جیسے انسان طہارت حاصل کرتا ہے, پاکی صافی ہوتی ہے, یہ حکمن ہوتی ہے. وضو کیا کہتے ہیں جی پاک ہو گیا, نماز پڑھنے کے قابل ہو گیا. وضو ٹوٹ گیا, کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی گندگی تو نظر نہیں آ رہی, لیکن اللہ کا حکم کی وجہ سے ناپاکی ہوئی, اللہ کے حکم سے پاکی ہو گئی. غسل کیا اس نے, وضو کیا, اس کو پاکی مل گئی. اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کھانا حلال کیا ہوا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب اگر کوئی اس پہ بحث کرے کہ بھئی یہ کیوں کھائیں, وہ کیوں نہیں کھا سکتے, دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کاکروچ بھی کھاتے ہیں, چوہے بھی کھاتے ہیں, سنیک بھی کھاتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں کھاتے ہیں, اب تو بندہ نام ہی نہیں لے سکتا, ہمیں کراہت آتی ہے. آج کل بھی بڑے آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ جی فلاں فلاں چمگادڑ جیسا جانور بھی کھا رہے ہیں لوگ, اور تو چھوڑو ان کی غلاظت بھی کھائی جا رہی ہے. ऐसी चीजें सुनने में आ रही हैं कि इंसान हैरान होता है कि ये भी खाने की चीजें कोई, लेकिन इंसान उनको भी खाया जा रहा है, क्योंकि उसके पास ये दीन, ये शरीयत, ये अल्लाह की तरफ से जो गाइडेंस है वो नहीं मिली। अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है आदम अलैहिस्सलाम को, अब गाइडेंस भी दी है ना आखिर कैसे रहना चाहिए, तो वो सारा तरीका भी सिखाया। और फिर उसके बाद अब देखें, एक चिकन है जिसको बगैर ज़बीहा के, और एक चिकन है जिसको अल्लाह के नाम से काटा गया, एक जानवर को अल्लाह का नाम लेकर काटा गया, वो उसके नाम से परमिशन, जैसे एक है मियां बीवी अपनी मर्जी से बन गए, और एक है कि वो बमुताबिक शरीयत मुहम्मदी उसका हक महर इतना, जब ये बात कह दी गई अब ये हलाल हो गया, अमल वही है लेकिन इस पे हलाल होने का फतवा आ गया, तो ये हुक्मन है, अल्लाह के हुक्म से वो चीज हो जाती है। आजकल लोगों ने एक अजीब सी बात बना ली है कि वो समझते हैं जानवर हलाल है, भाई जानवर भी हलाल होना चाहिए, बल्कि जानवर जिससे खरीदा जिस माल से वो भी हलाल होना चाहिए अगर उससे फायदा लेना है, और साथ ही साथ जो है उसके ज़बीहा भी जो है वो भी सही होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट बने हुए हैं वहां लिखा हुआ है हलाल, अगर उनसे जाके पूछें कि भाई ये हलाल तो है, जानवर तो हलाल है, क्या ये ज़बीहा भी है, अब वो हैरान होकर आपका मुंह देखेंगे कि ज़बीहा क्या होता है, उनको उस चीज का आइडिया नहीं है। आप उनके आम बंदे से जाके पूछें ऐसी कि भाई ज़बीहा है, वो कहेंगे हमें नहीं पता, जानवर वल्लाह यह हलाल है, क्योंकि हमें भी पता है चिकन हलाल जानवर है, गोट हलाल है, बीफ हलाल है, अभी हम कब कह रहे हैं कि भाई यहां खिंजीर पका हुआ है, तो आपने हर चीज हलाल जानवर है लेकिन ज़बीहा नहीं किया। ज़बीहा करने के लिए मशक्कत है, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ती है, और शरीयत यही चाहती है कि इंसान थोड़ी सी तकलीफ उठाए। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, दुनिया में आए तो यहां मशक्कत उठानी पड़ी उनको, अब वहां वो जो दस्तरखान आता था वो नहीं मिलता था, अब यहां उनको एग्रीकल्चर सिखाई गई और एग्रीकल्चर करना आसान काम नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है उनका खाना तैयार हुआ, बीवी को भी अब जो है पकाना पड़ा, पहले पक्के पकाए खाने आते थे हाँ, लेकिन साथ ही साथ कुरान मजीद में कहा ओ रस्त हुमा, कि अगर तुम ये मशक्कत उठा लोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें दोबारा जन्नत दे देंगे, और वो आपको भी मिलेगी और आपकी औलाद को भी मिलेगी। किसको मिलेगी? जो आपकी औलाद होगी, जो विरासत के हक रखेगी, उसको अल्लाह ताला जन्नत दे देंगे। तो भाई ये जो है खाना बहुत अहम चीज है इस इतबार से, है ना। तो अच्छा अब देखें, अगर मां जो है बच्चे को हलाल और सही चीज खिलाती है, और जो है इस खाने की वजह से ये बच्चा नेक बन जाता है, क्योंकि बल्कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही खाने की बड़ी अहमियत, क्योंकि जो बंदा खुद है उसका जेनेटिक्स वो भी तो उसी की जिस्म से बनेगा ना। अच्छा अब जो क्रोमोसोम होते हैं इनके ऊपर बिहेवियरल जीन्स होती हैं, और वो बिहेवियरल जीन्स से इंसान का मिजाज बनता है। कहते हैं ये मादर जात वली है, मादर जात वली क्या मतलब है कि इसका जेनेटिक्स ही इतना प्यारा बना हुआ है, क्योंकि इसके मां बाप इतनी एहतियात करते थे खाने पीने की, जरा भी शक आ जाए तो वो नहीं खाते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दफा एक शक वाला खाना जो है खिला दिया गया, तो उन्होंने उंगली मुंह में डाल के वॉमिट कर दिया, सारा निकाल दिया कि भाई ये शक। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर में कोई शक हुआ नहीं, बल्कि एक बकरी चोरी हो गई उस मल्ले की, अब वो बकरी मिल नहीं रही थी कि वो बकरी किधर चली गई, उन्होंने कितना अरसा बकरी का गोश्त ही नहीं खाया, कि अगर कहीं कोई वो बकरी ज़िबा करके कहीं वो हम मुझे न खिला दी जाए, उसका गोश्त मेरे तक न पहुंच जाए, कि इसमें शक आ गया कि बकरी के अंदर यहां इस मोहल्ले में। अच्छा, इसी तरह एक बंदा था, उसकी जवान बेटी गैर शादीशुदा और उसके पास पानी का एक वेल था, और एक बुजुर्ग वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसका पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि इसके घर में जवान बेटी बिला वजह गैर शादीशुदा बैठी हुई है। इतनी एहतियात करने वाले लोग थे हमारे बड़े, आजकल तो ये एहतियात मुमकिन ही नहीं रही। हम करना भी चाहें तो हम वो उस तरह उस लेवल की एहतियात नहीं कर सकते, क्योंकि अब शहर बड़े हो गए, इंसान भी माशाल्लाह खूब हो गए, और बेएहतियाती इतनी है कि वो पता नहीं, मस्जिद वाले भी कहते हैं कि लक पॉट होता है वो जो सारे लोग खाना पका के लिए आ जाते हैं, है पॉट लक, हाँ पॉट लक, वो पॉट लक में पता नहीं क्या पक क्या बंदे की बैड लक। वहां अगर ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर ऐसा खाना आ रहा हो इधर से उधर से, अब हम बैठे हुए देख रहे होते हैं कि यार बैड लक कहाँ आ गए, ये क्या खाना आएगा, क्या पता किसके घर से आएगा, क्या पका के लाएगा, किस हाल में। हमारे बड़े तो भाई ये बताते हैं कि जब खाना पका रहे होते थे तो भी उस वक्त भी तस्बीह पढ़ी जा सकती है, दो कलिमात हैं जो बड़े स्ट्रांग, सुभानअल्लाह अलअज़ीम वबिहम्दिही, है ना। तो अगर ये अगर कलिमात पढ़ लिए जाए, सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, पकाने वाला पका भी रहा है और कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, खाने के अंदर बरकत आ जाती है, कितनी बड़ी बात है, है ना, खाने के अंदर बरकत आ जाती है। तो मालूम हुआ कि भाई ज़बिया का होना अहमियत है, है ना, खाने का पाक साफ होना, जैसे वजू तहारत, ये एक अहम चीज है। तो इस तरह ये खाना पीना अच्छा, और खुद खाना, हाँ ये भी बड़ी अहमियत, दूसरों को खिलाना ये भी बड़ी अहमियत वाली बात है। आप देखें कि रोजे अगर फर्ज किया किसी बीमार बंदा जो है शेख फानी है, रोजा नहीं रख सकता, ये दूसरों को खाना खिला दें तो इसको इसका कफारा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह कोई घर में मुश्किल परेशानी, आपने गरीब गुरबा को खाना खिला दिया, है ना, इसके भी फायदे। हत्ता के एक फाहशा थी और उसने देखा एक प्यासा कुत्ता, और वो जो है प्यास के से मरने वाला, उसने जो है पानी लाकर उसके मुंह में डाला और कुत्ता जो है उसे पानी पी के खुश हुआ, अल्लाह ताला ने इसमें उसकी बख्शिश कर दी। कितनी बड़ी बात है, है ना, कि अब पानी के एक घूंट पिलाने पर, है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर ईमान वालों को मिलेंगे, और जो है पुल सरात के बाद जाम भर भर के पानी के पिलाएंगे, है ना, सुभान अल्लाह, पानी की अपनी अहमियत। हम हज करने जाते हैं और सुभान अल्लाह वहां पर जमजम पीते हैं, खुश होते हैं, है ना। तो भी खाना पीना इसकी अहमियत है कि अच्छा, अब फिरौन था, फिरौन जो है उसके लंगर बने हुए थे, खाना खिलाता था वो, और लोग आते थे खाते थे, जैसे यहां हमारे इस मुल्क में वेलफेयर सिस्टम बना हुआ है, फूड ड्राइव्स होते हैं यहां पर और लोग खाने खिलाते हैं, है ना। तो फिर एक वक्त आया कि जब उसके इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हुआ थोड़ा, तो उसके वजीरों ने उसको मशवरा दिया कि ये तुम जो मुफ्त खोरों को खाने खिलाते हो ना और अपने पैसे जाया करते हो, ये निकम्मे लोग हैं, आते हैं खाना खा के चले जाते हैं, तुम इसको टाइट करो, इनका ये खाना वाना ये जो खिला रहे हो ना ये गलत कर रहे हो। उसने वो खाने के निजाम को टाइट करना शुरू कर दिया, उसने ये समझ लिया कि वाकई ये मुफ्त हो रहे हैं, इनको काम करना चाहिए और ये खामखा खाना खा के चले जाते हैं। कहते हैं जब उसने ये टाइटनेस की तो अल्लाह ने उसको अजाब भेजने शुरू कर दिए। जब उसका मुकम्मल दस्तरखान बंद हो गया, उसको पानी में डुबो दिया गया, फिरौन जैसे जालिम बादशाह उस खाना खिलाने की वजह से बचा हुआ था। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हमें खुद भी जाती तौर पे एक तजर्बा हुआ। पाकिस्तान में एक इलाका था, मैं वहां जाता था तो वहां से गुजरते थे, बदबू आती थी, गली ऐसी थी, और वहां पर नशाई लोग भी बैठे होते थे। उसी गली के पीछे जो है ना, एक टूटी फूटी सी मस्जिद, कच्ची सी, वो भी थी। तो मैं अक्सर वहां पर, हमारे जो मुफ्ती साहब हैं उनसे मैं पूछता कि भाई इस इलाके के अंदर आम गुर्बत तो है लेकिन ये गली बहुत अजीब है, यहां पर बस ये नशाई लोग बैठे हुए हैं और ये कोई काम शाम नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी काम शाम तो कोई नहीं करते। अच्छा, हमें भी थोड़ी सी दिलचस्पी हुई क्योंकि उस गली में वहां पर एक हमारे दोस्त थे जो हमें बड़ी मोहब्बत से बुलाया करते थे, तो उनके पास जाना होता था। तो वहां जब जाके बैठे तो अब मैं इस वजाकता से गया तो वो जो नशाई किस्म के लोग होते हैं वो भी थोड़े मुतवज्जे हुए कि भाई यार ये कोई बुजुर्ग आ गए हैं यहां पर। तो उनमें से कुछ जो ना वो आगे हमारे पास भी बैठने शुरू हो गए। जब मैं उसके पास गया ना, मैंने देखा कि उसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी थे। हत्ता कि एक बंदा मुझे मिला, वो कहते मैंने वहां ला पढ़ा हुआ है। तो मैंने भी ऐसे थोड़ा सा हैरानी सी भी हुई, लेकिन मैं एहतियात भी करता था कि पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, लेकिन दिल में एक थोड़ी सी हमदर्दी सी भी हो गई कि पता नहीं बेचारों के क्या हालात हैं, जैसे यहां होमलेस लोग होते हैं। तो खैर, मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि भाई मुफ्ती साहब ऐसे करते हैं कि कोई देख पका के इनको दे दो, कोई खाना वाना दे दो। तो हमारे पास ऐसे कुछ सिस्टम होता था तो हम वक्तन फवक्तन बाद अवकात हम खुद देते थे, बाद अवकात हमारे दोस्तों में से कोई कहता था कि भाई कोई सदका कर दें, फला कर दें, तो हम वहां खाना पका के उनको देना शुरू हो गया। जब भी होता था मैं मुफ्ती साहब से कहता वहां पर दे देना, उधर चला देना, कुछ उधर भी बांट देना। अच्छा, हमारे पास जो है हर साल कुर्बानी का सिलसिला भी होता है तो यहां से पैसे भेज देते थे। तो खास तौर पे उनके लिए भी मैं कह देता था कि उस गली में भी जरा आपने ध्यान रखना है कि भी उधर भी देते रहे। अब अंदाजा करें कि उस खाना खिलाने की वजह से वहां पर चेंजेस आनी शुरू हो गई। मुझे नहीं अंदाजा हुआ, ये अभी जब लास्ट टाइम मैंने विजिट किया ना इतने सालों के बाद, तो मैं हैरान हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो नशाई वहां खत्म होते चले गए और लोगों के हालात बदलते चले गए। अच्छा, फिर वो वहां जो टूटी फूटी मस्जिद थी, तो वो जो हमारे एक दोस्त थे वो रिटायर्ड फौजी थे, तो वो उन्होंने उस मस्जिद में बुलाया और बयान भी करवा दिया। और मैंने वहां जाके बयान भी उसी तर्ज पे किया कि भाई इंसान मेहनत करे, फला करे, क्योंकि वहां उस इलाके के लोगों के मुताबिक, क्योंकि उसके बाहर सारे वही नशाई होते थे, उसी में से मैं गुजर के जाता था, तो नसीहत भी मैं उसी तर्ज की करता था। अच्छा, फिर मस्जिद के अंदर खाना वाना भी होता था, तो मुझे ऐसे लगते शायद वही नशाई जो ना सारे वहां उठ के आ जाते थे खाना खाने के लिए। तो बाद में पूछा, कहने लगा हाँ यही मोहल्ले के लोग ही आते हैं जो यहां रहते हैं, उन्हीं को मैं बयान भी करना शुरू करता, हर दफे में जाता मैं उनको बयान करके आ जाता। अल्लाह की शान, फिर वो मस्जिद जो है वो मुझे हाजी साहब जो थे वहां, उन्होंने कहा कि भाई इसकी जो है मरम्मत कराई जाए। कुछ कुछ हमने डाला, कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, आहिस्ता आहिस्ता वो मस्जिद जो है ना बननी शुरू हुई। फिर उसके इर्द गिर्द की थोड़ी सी जगह कुछ घर और ले लिए तो वो एक अच्छी मस्जिद वहां पर बन गई। अब मस्जिद भी बन गई, वहां पर जो है खाने का भी एक सिलसिला हमने जो शुरू किया वो वहां के मकामी लोगों ने भी वहां, क्योंकि वहां कुछ लोग बड़े सिंसियर किस्म के थे, तो वो भी खाना खिलाने लग गए और करते चले गए। अब मैं जब गया तो मैंने देखा उस गली के अंदर अच्छे अच्छे नए घर बने हुए थे, यानी घरों के अंदर जो कच्चे टूटे हुए बुरी हालत के घर थे वो सारे घर भी अच्छे। मुझे तजस्सुस हुआ क्या हुआ, वो जो नशाई थे चले गए यहां से? कहेंगे नहीं, वो उन्होंने तौबा तैयब हो गए, आप हर दफा आते थे यहां तौबा करवाते थे तो इनके हालात बदलते चले गए और ये इनको खाना मिला है, इनके मिजाज बदले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके घर भी संवर गए हैं और इनके नए इन्होंने घर भी बना लिए हैं, कोई जॉबें भी मिल गई हैं, नशा भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है, क्योंकि वो गिरे पड़े मुझे बंदे अब नजर ही नहीं आते थे। मैं ऐसे लगता था जैसे पहले मैं हार्लम जाता था और फिर बाद में वहां मस्जिदें बनी और अब आप वहां जाए मस्जिदों के इर्द गिर्द तो वो ड्रग फ्री जोन बने हुए हैं वहां पर, वहां पर बिजनेस भी चल रहे हैं और वो हालात भी अच्छा। जमैका तो चलो यहाँ करीब है, आपने अक्सर देखा होगा जमैका में तो पहले हर वक्त ही नशाई फिरते थे, अब आप वहां जाएं माशाल्लाह मदरसे हैं, मस्जिदें हैं मुसलमानों के आने से और ये चैरिटी वर्क करने से, खाने पिलाने से अल्हम्दुलिल्लाह चीजें तब्दील हो गई। तो भाई ये थोड़ा सा बहरहाल खाने से मुतल्लिक की बात चलती रही, मेरा तो इरादा था मैं आपको रोटी कपड़ा और मकान तक ले जाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि खाने की बात इतनी हुई है कि आपको भूख लगने लग गई होगी और अब जी चाहता होगा खाना खा लें, है ना, खाना भी हमारा वेट कर रहा है। तो इसी पे बाहर समेट देते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।